दिन भर, आज है तारीख 23 सितंबर, दिन बुधवार। मैं हूँ रेहान फदर। बिहार में महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया।
242 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा की गई है। अभी एक दो दिन के बाद और घोषणा हो जाएगी। इसमें हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिया है महागठबंधन।
दुनिया जहान में आज चर्चा, नेपाल में संविधान के मसले पर, भारत और नेपाल के बीच बढ़ते अविश्वास पर।
सरकार से और हम लोग को समझौता हुआ था है, मधेश एक स्वायत्त प्रदेश होगा और ये देश में रहने वाले मुस्लिम, दलित, जनजाति सभी को हर क्षेत्र में समानुपाती का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये जो संविधान जारी हुआ है ना, उसमें मधेशी के लिए कुछ है, न दलित का है, न जनजाति का है, न थारू का है।
लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार प्रगति सक्सेना से। आज राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 242 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार ने की। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और नालंदा जिले की राजगीर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के दोनों बेटे इस बार विधानसभा चुनावों में उतरेंगे। पोप फ्रांसिस अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। ये उनकी अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति ओबामा से बातचीत से पहले व्हाइट हाउस की लॉन में उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। बाद में पोप उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े रोमन कैथोलिक चर्च में अमेरिका के पादरियों के साथ प्रार्थना करेंगे। फ्रांस का कहना है कि मिस्र उन दो युद्ध विमानों को खरीदने के लिए राजी हो गया है जिन्हें रूस को बेचा जाना था, लेकिन यूक्रेन संकट के चलते यह सौदा रद्द कर दिया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक वक्तव्य के मुताबिक राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी दो मिस्त्राल विमानों की बिक्री की शर्तों पर राजी हो गए हैं, लेकिन इनकी कीमत का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को की एक मस्जिद को फिर से खोलने के समारोह में हिस्सा लिया। जुमा मस्जिद रूस की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे 4 साल पहले ढहा दिया गया था। अब इसका पुनर्निर्माण किया गया है ताकि मॉस्को के करीब 10,000 मुसलमान यहां नमाज अदा कर सकें। इस समारोह में राष्ट्रपति पुतिन के साथ तुर्की और फलस्तीनी नेता भी शामिल थे। राष्ट्रपति पुतिन ने इस मौके पर इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों की निंदा की। इस तथाकथित इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने दुनिया के इस महान धर्म को जोखिम में डाल दिया है। लोगों को, धार्मिक गुरुओं को भी जान से मारकर और दुनिया की धरोहर स्मारकों को बर्बर तरीके से नष्ट करके वे लोगों में नफरत के बीज बो रहे हैं। ये थे राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मिस्र में कैद अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद फाहमी को मिस्र के राष्ट्रपति ने माफ़ी दे दी है। मोहम्मद फाहमी अल जजीरा के उन 3 पत्रकारों में से एक हैं जिन्हें इस आरोप में कैद किया गया था कि वो अपनी रिपोर्टिंग से चरमपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके केस से दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी के समर्थन में आंदोलन किए गए ताकि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। चीन के उइगर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था का कहना है कि वह इस बात से निराश है कि ब्रितानी वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न ने सार्वजनिक तौर पर उइगर समुदाय के दमन के लिए चीन की नीतियों की निंदा नहीं की। ब्रिटेन के वित्त मंत्री आजकल चीन के पश्चिमी शहर जानजिंग के व्यापारिक दौरे पर हैं। इस शहर में बहुत से उइगर रहते हैं। जॉर्ज ऑसबॉर्न ने घोषणा की है कि जानजिंग मूल की कंपनी उत्तरी इंग्लैंड में रियल एस्टेट पर करीब 2 अरब डॉलर खर्च करेगी। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने 242 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के दोनों बेटे इस बार वैशाली जिले से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे। महागठबंधन द्वारा आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के साथ ही इस पर मोहर भी लग गई। महागठबंधन की ओर से आज नीतीश कुमार ने सूची जारी की। समाज के किस तबके को महागठबंधन में कितनी सीटें मिली हैं, कौन कौन है प्रमुख उम्मीदवार, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
महागठबंधन यानी कि राजद जदयू कांग्रेस अलायंस द्वारा आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सूची जारी की। सूची के मुताबिक लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ और छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लालू के दोनों बेटों के अलावा उनके निजी सचिव भोला यादव को भी दरभंगा के बहादुरपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा राजद अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे समस्तीपुर के परिहार, वर्तमान विधानसभा में जदयू के नेता और मंत्री विजय चौधरी समस्तीपुर के सराय रंजन, विधानसभा में राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा के अलीनगर और कांग्रेस नेता सदानंद सिंह भागलपुर के कहलगांव से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महागठबंधन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि टिकट बंटवारे में समाज के सभी तबके का उचित प्रतिनिधित्व हो।
242 उम्मीदवारों की के नाम की आज घोषणा की गई है, अभी एक दो दिन के बाद और घोषणा हो जाएगी। इसमें हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिया है महागठबंधन ने। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं, बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूँ, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं, एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं, मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं।
आज राजद जदयू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी में महागठबंधन ने कुल 242 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और नालंदा जिले की राजगीर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। महागठबंधन ने कुल 25 महिलाओं को टिकट दिया है। नीतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर दोहराया कि महागठबंधन के लिए विकास ही चुनाव का मुद्दा रहेगा। साथ ही आरक्षण संबंधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक राजनैतिक संगठन, इसके अलावे कुछ नहीं, और बार बार ये कहते हैं कि हमारा विचार वही है, और अभी भी 3 दिन के शिविर में उन्होंने कहा, इसलिए उनके कहने से यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ। अमित शाह जी तो आज है, कल नहीं रहेंगे, बिहार चुनाव में हारेंगे, छुट्टी होगी।
महागठबंधन में शामिल राजद और जदयू को 101 सीटों जबकि कांग्रेस को 41 सीटें मिली हैं। महागठबंधन की ओर से शनिवार को ही यह घोषणा कर दी गई थी कि कौन पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज केवल उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इनमें से भी कई उम्मीदवारों के नाम पहले चरण का नामांकन शुरू होने के कारण पहले ही सामने आ चुके थे। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
क्या महिलाओं के नौकरी करने के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ी है? आपका जवाब चाहे जो भी हो, छत्तीसगढ़ में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से प्रकाशित 10वीं के बच्चों के लिए अनिवार्य सामाजिक विज्ञान की किताब में यही पढ़ाया जा रहा है। एक शिकायत के बाद इस किताब को लेकर राज्य भर में विरोध शुरू हो गया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में 10वीं कक्षा के बच्चों को सामाजिक विज्ञान में आर्थिक समस्याएं एवं चुनौतियां शीर्षक से एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बेरोजगारी के 9 कारणों को गिनाते हुए महिलाओं द्वारा नौकरी को भी एक कारण बताया गया है। आदिवासी बहुल जशपुर इलाके की एक महिला शिक्षिका सौम्या गर्ग ने पिछले महीने इस बात की शिकायत राज्य महिला आयोग से की थी। सौम्या कहती हैं,
बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि बुक में लिखा हुआ है भारत में बेरोजगारी का कारण, उसके बाद कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें 6 पॉइंट ये था कि महिलाओं द्वारा नौकरी करना भी भारत में बेरोजगारी का कारण है। स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में बहुत कम महिलाएं नौकरी करती थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में बहुत सी महिलाएं नौकरी करने लगी, जिससे पुरुषों में बेरोजगारी का अनुपात बढ़ा है।
लेकिन सौम्या की शिकायत महीने भर के बाद भी अनसुनी रह गई। सौम्या मानती हैं कि इस तरह के पाठ से महिलाएं कहीं न कहीं अपमानित हो रही हैं।
बेरोजगारी की समस्या पुरुषों में जितनी है उतनी महिलाओं में भी है। हम आज महिलाओं को क्यों शिक्षित कर रहे हैं? ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन जब वो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, काम करती हैं, तो उन्हें हम बोल दे रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का कारण है। तो क्या ये सही है? हम बच्चों को किस तरीके की सोच दे रहे हैं?
इस किताब को प्रकाशित करने वाले छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष देवजी भाई पटेल भी मानते हैं कि इस तरह के पाठ से अच्छा संदेश नहीं जाता।
मैं यह समझता हूँ कि महिलाएं वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ चढ़ के पुरुषों से भी ज्यादा जो है काम करती है, पुरुषों से अच्छी पढ़ाई करती है, और महिलाएं इसलिए आज अच्छी क्वालिफाई होके नौकरियों में पुरुषों से भी अधिक जा रही है। आज ही मैं इसको पूरा पैनल जिन्होंने इस प्रकार की सोच दर्शाई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा।
सरकार लाख सफाई दे, विपक्षी दल कांग्रेस को तो एक मुद्दा मिल ही गया है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि उनकी पार्टी इस मामले पर राज्य भर में प्रदर्शन करेगी।
महिलाएं कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं, महिलाओं के प्रति इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करके आखिर भाजपा सरकार कैसा समाज बनाना चाहती है? महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की मध्ययुगीन सामंतवादी सोच ना काबिले बर्दाश्त। इस किताब में कहा गया है कि महिलाओं के द्वारा नौकरी करने के कारण पुरुषों में बेरोजगारी का अनुपात बढ़ा है, भावी पीढ़ी को गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा बच्चों को शुरू से ही महिलाओं के बारे में गलत बातें दिमाग में डालकर पढ़ाने की साजिश की जा रही है। हर हाथ को काम देने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में विफल रही। भाजपा सरकार अपनी नाकामी और अपनी विफलता को अब महिलाओं के मत से मारने की कुचाल चल रही है।
फिलहाल राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही है और दावा किया है कि किताबों के लेखन में जो लोग शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने भविष्य में सभी स्कूली पाठ्यक्रमों की जांच के लिए भी एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
एक ट्रांसजेंडर पुरुष के अपने माँ बाप से खतरा होने की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया है। 18 साल के शिवी भारतीय नागरिक हैं पर छोटी उम्र से ही अमेरिका में रह रहे हैं। कोर्ट को याचिका में उन्होंने कहा है कि उनके माँ बाप छुट्टी के बहाने उन्हें भारत ले आए और अब उनका पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड जबरन अपने पास रख लिया है। शिवी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके माँ बाप जान गए हैं कि वो ट्रांसजेंडर हैं। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
पैदाइश से शिवी लड़की हैं पर अब वो अपनी लैंगिक पहचान पुरुष मानते हैं और उनके मुताबिक यही उनकी मौजूदा परेशानियों की जड़ है। अमेरिका में उनकी महिला दोस्त के बारे में पता चलने के बाद ही उनके माँ बाप ने भारत आने की योजना बनाई ताकि उन्हें सुधारा जा सके, पर तब उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। वो हर साल भारत आते रहे हैं और उनके माँ बाप के कहने पर इस साल भी छुट्टी के लिए आगरा आए, पर अब उन्हें लौटने नहीं दिया जा रहा।
I tried asking for it back. I tried arguing. I mean, none of it worked. They found out that I have a girlfriend.
आगरा में मेरे बार बार मांगने पर भी मेरा पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड मुझे नहीं दिया गया। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। वो नाराज थे। उन्होंने मुझे कहा कि लड़की की तरह ही रहूँ वरना मेरे साथ बुरा होगा।
शिवी अमेरिका वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं और याचिका में उन्होंने अदालत से अपना पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड वापस दिलवाने में मदद मांगी है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा,
भारत उदार देश है। उन बातों पर फैसला सुनाना जिन्हें लोग पूरी तरह समझते नहीं हैं और अलग लैंगिक पहचान के व्यक्ति को प्रताड़ित करना कट्टरपन से कम नहीं।
शिवी के माँ बाप ने BBC से बात करने से मना कर दिया। शिवी ने बताया कि उनका परिवार इस साल जुलाई में आगरा आया। सितंबर में जब उनकी माँ उनके भाई को लेकर अमेरिका गईं, उन्हीं दिनों में मौका देख शिवी दिल्ली भाग आईं और यहाँ ट्रांसजेंडर मुद्दों पर काम कर रही संस्था नजरिया और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से मदद ली।
I obviously don't fit into their ideal dream version of me.
मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद मैं अपने माँ बाप की नज़र में अब वैसी आदर्श लड़की नहीं रही जैसी उन्होंने चाही थी, क्योंकि मैंने वैसा इंसान बनने से मना कर दिया जो मैं नहीं हूँ। अब उनका मुझ पर जोर नहीं चल रहा था और इसी वजह से वो ये कर रहे थे। मैंने तय किया कि मैं ऐसा घुटन भरा जीवन नहीं जीऊंगा।
याचिका में बताया गया है कि दिल्ली में शिवी के पिता कुछ लोगों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए इन एक्टिविस्ट के घर भी पहुंचे। इन अपरिचित लोगों ने खुद को दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर और शिकायतकर्ता के पिता को नोटिस भेज उन पर लगाए इन आरोपों का जवाब मांगा है। दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। यूरोपियन कमीशन ने 19 सदस्य देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो शरणार्थियों से जुड़े नियमों को लागू नहीं करेंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक से पहले ये चेतावनी दी गई। वहीं स्लोवाकिया ने अपना रुख कड़ा करते हुए प्रवासी कोटे को चुनौती देने की बात कही है। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रही हैं हरिता कांडपाल।
प्रवासी संकट से जूझ रहे यूरोप में यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि जो देश उसकी शरणार्थियों से जुड़ी नीतियों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि जर्मनी और फ्रांस के अलावा बाकी यूरोपीय देश शरणार्थियों को लेकर बनाई गई यूरोपीय नीति का पालन नहीं कर रहे। कमीशन के उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमैंस ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के 19 सदस्य देशों के खिलाफ कथित उल्लंघन के 40 नए मामले चलाए जाएंगे।
Our common European asylum system can only work if everyone plays by the rules. This is why
यूरोप में शरणार्थियों की नीति तभी काम कर सकती है जब सभी लोग नियमों का पालन करें। इसलिए हम अब कार्रवाई कर रहे हैं ताकि देश सहमति के मुताबिक नियम लागू करें। सिर्फ 5 ही देशों ने शरणार्थियों से जुड़े नियमों का पालन किया है, तो हम उल्लंघन के 40 नए मामले शुरू करेंगे और 35 खुले मामले होंगे। डबलिन रेगुलेशन के मुताबिक सबको नियम लागू करने होंगे।
ये थे फ्रांस टिमरमैंस के शब्द। प्रवासियों के कोटे के प्रस्ताव पर यूरोपियन यूनियन के देश बटे हुए हैं। कल यूरोपियन यूनियन के देशों के मंत्रियों की बैठक में प्रवासी कोटे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और चेक रिपब्लिक ने इसके खिलाफ वोट किया था। इन चारों देशों के नेताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने उनकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया। स्लोवाकिया ने साफ कर दिया है कि वो प्रवासी कोटे की योजना को अपने यहाँ लागू नहीं करेगा। स्लोवाकिया ने तो यहाँ तक कहा कि इस प्रस्ताव को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती देगा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा,
Pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území Slovenska.
मैं जब तक प्रधानमंत्री रहूंगा अनिवार्य प्रवासी कोटा स्लोवाकिया में लागू नहीं होगा। हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे, पर इस भद्देपन के लिए जिम्मेदार लोग वो हैं जिन्होंने बहुमत से इसे पास कर दिया। इन लोगों ने जानबूझकर और मूर्खतापूर्ण तरीके से प्रवासियों के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतभेदों को जन्म दिया है।
ये थे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के शब्द। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति की अध्यक्ष फेडरिका मोगरीनी ने ब्रसेल्स में कहा कि शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एजेंसियों को ज्यादा फंड मुहैया कराया जाएगा।
रिस्टोरिंग द फंडिंग फॉर द एजेंसीज दैट ऑपरेट विद द रेफ्यूजीज ऑन द ग्राउंड।
तुर्की, लेबनान और सीरिया में काम करने वाली एजेंसियों के लिए फंडिंग बहाल की जा रही है और ये तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। सब पूछते हैं कि इतने शरणार्थी यूरोप क्यों आ रहे हैं। इन देशों में काम करने वाली एजेंसियों को फंड की कमी महसूस हो रही थी, तो हमने फैसला किया है कि जमीन पर काम कर रही एजेंसियों के लिए हम जरूरी रकम देंगे ताकि वो लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का काम कर सकें।
ये थे फेडरिका मोगरीनी के शब्द। प्रवासी संकट पर बुलाई गई आपात बैठक में यूरोपियन यूनियन की सीमाओं को मजबूत करने और आने वाले प्रवासियों को असरदार तरीके से वापस भेजने पर विचार किया जाएगा। बैठक में सीरिया जैसे पड़ोसी देशों को दी जाने वाली मदद बढ़ाने पर भी चर्चा होगी।
यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक। नेपाल को नया संविधान मिला है, लेकिन सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस संविधान से खुश नहीं और भारत इससे चिंता में है। लंबी खुली सीमा के अलावा भी बहुत कुछ है जो दोनों देशों को जोड़ती है। ऐसे में संविधान के मसले पर भारत नेपाल में अविश्वास से हर कोई हैरत में है। ये अविश्वास क्यों पैदा हुआ है? आज दुनिया जहान में निखिल रंजन इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहान।
नेपाल को संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गते देखि प्रारंभ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु।
करीब 8 साल की मशक्कत के बाद आए नेपाल के नए संविधान का संसद में तो ताली बजाकर स्वागत हुआ, लेकिन सड़कों पर गूंज रही आवाजों के सुर कुछ अलग हैं। पिछले 40 दिनों से नेपाल में हड़ताल है और संविधान के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे ये लोग मधेसी समुदाय के हैं। मधेसी नेता निजामुद्दीन समानी,
सरकार
बिहार से और हम लोग को समझौता हुआ था उसमें स्पष्ट है मधेश एक स्वायत्त प्रदेश होगा और ये देश में रहने वाले मुस्लिम दलित जनजाति सभी को हर क्षेत्र में समानुपाती का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये जो संविधान जारी हुआ है उस संविधान में ना उसमें मधेशी के लिए कुछ है, न दलित का है, न जनजाति का है, न थारू का है।
आखिर इस संविधान में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? मधेशियों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो,
सीमांकन पर हमें आपत्ति है, जो हमें मधेश प्रदेश की बात कही गई थी वो हमें नहीं मिला। दूसरी बात, जो प्रदेश को अधिकार संपन्न प्रदेश बनाने की बात, उस प्रदेशों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। तीसरी बात थी जो नागरिकता कानून था उसमें उलटफेर करने की अवस्था दिख रहा है। चौथी बात है, पार्लियामेंट में पॉपुलेशन के आधार पर हमें सीट मिला था, अभी के सेंसस के आधार पर 51% मधेश का पॉपुलेशन है, हमें 51% सीट चाहिए। नहीं नहीं, राज्य के विगत के मूवमेंट में समझदारी बनी थी कि राज्य के सभी अंगों में हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, लेकिन इस कंफ्यूजन में इस बात से इनकार करने का प्रयास हुआ है। जो नेपाली नागरिक है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सही पद पर जाने का कंस्टिट्यूशनल राइट आज तक के संविधान में हमें मिला, लेकिन इस कंफ्यूजन ने वो अभी अधिकार हमें छीन लिया।
नेपाल को संविधान का इंतजार लंबे समय से था और सत्ताधारी दल इसे नेपाल के लिए ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। माओवादी नेता और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड मानते हैं कि मधेशियों की चिंता संविधान में संशोधन के जरिए दूर की जा सकती है।
हम अविलंब मधेश केंद्रित जो दल आंदोलन में उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। मधेशी जनता का भी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व के बारे में सवाल है, तो वो हम संविधान संशोधन करके संबोधन कर सकते हैं। ये जो क्षेत्र निर्धारण की बात है उसमें पॉपुलेशन के आधार पर करने के लिए भी हम तैयार है, और रही बात प्रदेश की सीमांकन की, वो भी टेबल में बैठ करके उनकी जेन्युइन कंसर्न को हम संबोधन कर सकते हैं।
विरोध करने वालों में नेपाल के तराई इलाकों के वही लोग हैं जो कभी बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से गए थे। भारत के इन इलाकों का नेपाल से रोटी और बेटी का रिश्ता बहुत पुराना है। वैसे 1700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी भारत नेपाल की खुली सीमा के अलावा और भी बहुत कुछ है जो दोनों देशों को जोड़े रखता है। ऐसे में जब भारत सरकार की ओर से संविधान का स्वागत करने की बजाय ठंडा उत्साह दिखाया गया तो नेपाल को ये बात नागवार गुजरी।
हमें इससे थोड़ा दुख तो जरूर हुआ है, क्योंकि नेपाली जनता के बहुत लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद और नेपाल की पार्टी नेताओं और जनता की काफी मेहनत के बाद संविधान सभा से संविधान आया है, और इस प्रक्रिया में भारत की शुरू से ही सहयोग और सद्भाव रहा है। और जब शांति प्रक्रिया की समापन जैसा हुआ है, हमें उम्मीद थी कि भारत भी इसमें गर्व महसूस करेगा और सबसे पहले भारत ही स्वागत करेगा।
नेपाल ये मान रहा है कि संविधान अभी पूरा नहीं है। संसद में बहुमत रखने वाली 3 प्रमुख पार्टियों ने अपने एजेंडे चलाए हैं और यही वजह है कि संविधान आम सहमति की बजाय बहुमत से तैयार हुआ। संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा को निर्वाचन के जरिए गठित किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसे सिर्फ नाम के ही अधिकार मिले, काम किसी और ने किया। काठमांडू में वरिष्ठ पत्रकार कनक मणि दीक्षित।
ये लोग ने एक प्रतिनिधिमूलक संविधान सभा को प्रतिनिधिमूलक हिसाब से काम करने नहीं दिया। दूसरा, मधेश केंद्रित दल का नेता जिसने निर्वाचन में हार गए थे, उन लोग को एक मुद्दा चाहिए था और मुद्दा के लिए उन लोग ने एक समथर प्रांत को ही अपना मुद्दा बना दिया। और अंतिम बात यह है कि दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्र, सबसे लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत ने जैसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ एक संविधान ले आए, उसको बहुत ठंडा हिसाब ले, वेरी फ्रिजिड मैं कहूंगा अंग्रेजी में तरीके से इसको स्वागत भी नहीं किया, सिर्फ नोट किया। और आगे दिन में मेरे ख्याल में क्या होगा क्या ना होगा इसमें भर पड़ेगा कि तीन शक्ति का बीच का संबंध कैसे होगा।
पिछले साल भारत में जिस वक्त सरकार बदली, नेपाल में संविधान लिखे जाने का काम तेजी पर था। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में कदम रखे। इस दौरे पर तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नेपाल को अपनी चिंता का एहसास दिला गए। नेपाल में भारत के पूर्व राजनयिक देव मुखर्जी।
मोदी जी नेपाल के पार्लियामेंट में कहा
कहा था कि आपको अपने को पुराने जमाने के ऋषि कैसे समझना चाहिए, भविष्य की ओर देखिए। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि देखिए ये आप 10-12 जन मिलके एक संविधान का फैसला ले रहे हैं, ये सोच के देखिए आपको सभी को आपको एक साथ ले जाना है, सभी को सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए संविधान को।
भारत को शायद ये अंदेशा पहले से था कि मधेसी और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की अनदेखी हो सकती है। संविधान तैयार होने के बाद जब इसकी बातें सामने आ गईं तो विदेश सचिव को भेजा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूर्व राजनयिक राकेश सूद:
कुछ हद तक ये बात ठीक है कि विदेश सचिव जब तक वहाँ गए तब तक वहाँ पर वोटिंग संविधान के ऊपर वो हो चुकी थी, और इसलिए अब उसके पश्चात उसके अंदर कोई रद्दो बदल करना कठिन था। पर उससे पहले सुषमा स्वराज जी ने भी वक्तव्य दिया था, विदेश मंत्री हैं, उससे पहले 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर प्रधानमंत्री सुशील कोइराला जी से भी बातचीत की थी।
भूकंप की त्रासदी से जूझते नेपाल को इस वक्त मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन वो अपना सिर उठाए रखना चाहता है। भारत नेपाल की मदद के लिए जो वादे कर आया है उसे पूरा करने का काम भी अभी बाकी है।
अगले 5 साल में हमने वायदा किया है कि हम $2 बिलियन नेपाल में लगाएंगे। ये सब इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीजें इकट्ठे बैठकर करनी है, और ये तभी होगा अगर हम लोग ये जो तल्खी आई है हमारे रिश्तों में इसको जल्द से जल्द इसका समाधान करें।
बीते 3 दशकों में नेपाल ने बहुत मुश्किलें देखी है। राजशाही से लोकतंत्र, धार्मिक राष्ट्र से धर्मनिरपेक्षता और पारंपरिक पहाड़ी देश से आधुनिक गणराज्य बनने की राह पर चलते नेपाल ने जो कुछ खोया है उससे उबर पाना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सदियों पुराने दो देशों के रिश्तों में तनाव और मुश्किलें बढ़ाएगा। दोनों देश कम से कम इतनी बात तो खूब समझते हैं। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच के लिए भारतीय ए टीम की कमान पंजाब टीम के कप्तान मनदीप सिंह के हाथों में दी गई है। 2 अक्टूबर से शुरू हो रही महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला सीरीज से पहले मेहमान टीम दिल्ली में 20 ओवर का अभ्यास मैच खेलेगी। वहीं भारतीय टीम इस घरेलू सीरीज की तैयारियों के लिए बेंगलुरु में पसीना बहा रही है। भारतीय टीम के पिछले श्रीलंका दौरे पर कामयाब रहने वाले स्पिनर अमित मिश्रा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों टीम में शामिल किए गए हैं। श्रीलंका दौरे पर अमित की 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई थी, जहां 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने 15 विकेट हासिल किए थे। अमित का कहना है कि श्रीलंका में किए प्रदर्शन से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है।
मुझे लगता है कि आप जो किसी भी वर्कआउट को आप करते हैं, जब किसी भी चीज को आप इम्प्रूव करते हैं उससे आपके अगर परफॉर्मेंस बढ़ती है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडियन टीम के लिए, अपने स्टेट के लिए कहीं भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी फिर वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट होता है। वो इसलिए होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो आपको वर्क कर रहा है, टीम को वर्क कर रहा है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी हाई होता है कि यार जो मैं कर रहा हूं वो सही चीज है, तो इससे कॉन्फिडेंस हाई होता है।
वहीं ऑफ स्पिनर आर अश्विन के साथ टीम के तौर पर काम करने से उन्हें काफी फायदा मिला है। अश्विन के साथ अपनी पार्टनरशिप पर अमित कहते हैं,
आई थिंक जिस तरह से अभी हम अश्विन के साथ मैं पहले भी खेल चुका हूँ, हमें हमेशा पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं ना उसको ना मुझे, और सबसे अच्छी चीज़ है उसकी और मेरे अंदर की कुछ भी लगता है तो हम दोनों शेयर करते हैं आपस में कि ये कर सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बॉलिंग में ये कर सकते हैं, मैं जाके बताता हूँ, वो जाके बताता है, तो इससे अच्छी पार्टनरशिप हो नहीं सकती। कई बार ऐसा होता है कि हर कोई हर रोज विकेट नहीं लेता है, तो दूसरे पार्टनरशिप का मतलब ये है कि अगर वो विकेट ले रहा है तो आप प्रेशर बनाने का पार्टनरशिप होना चाहिए। तो हम दोनों के अंदर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है, और जितने भी जैसे स्पिनर हैं या फास्ट बॉलर हैं सबके साथ हमारा आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है।
और अब बात हॉकी की। 2 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान आज किया गया। 21 सदस्यों वाली टीम की कमान सरदार सिंह ही संभालेंगे, वहीं गोलकीपर PR श्रीजेश टीम के उपकप्तान होंगे। ये दौरा नवंबर से रायपुर में होने वाली हॉकी विश्व लीग फाइनल की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम है। कोच रोलेंट ऑल्टमिस के नेतृत्व में दिल्ली में लगे लंबे अभ्यास कैंप के बाद टीम का चयन किया गया। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। आज राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 242 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पोप फ्रांसिस अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंच गए हैं। ये उनकी अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा है। फ्रांस का कहना है कि मिस्र उन दो युद्ध विमानों को खरीदने के लिए राजी हो गया है जिन्हें रूस को बेचा जाना था, लेकिन यूक्रेन संकट के चलते यह सौदा रद्द कर दिया गया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को की एक मस्जिद को फिर से खोलने के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों की निंदा की। चीन के उइगर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था का कहना है कि वह इस बात से निराश है कि ब्रितानी वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न ने सार्वजनिक तौर पर उइगर समुदाय के दमन के लिए चीन की नीतियों की निंदा नहीं की। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।